आज का रात्रि क्लास है 14/1/1967। सर्विस में रह करके अपना जीवन बनाना है, कौन सी सर्विस में? ईश्वरीय सर्विस में रह करके अपना जीवन बनाना है। पहले तो अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना तो जीवन बनाएं। देखें कि आसुरी सर्विस में कितना टाइम देते हैं और ईश्वरीय सेवा में कितना टाइम देते हैं। ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय और संपर्क की बाजी लगावेंगे तो जीवन जरूर बनेगा। तो ऐसे नहीं अपना जीवन बनाया नहीं, और दूसरों के लिए मेहनत करते रहे। पहले अपना सुधार, फिर पर का सुधार। बाकी दूसरे के लिए ही मेहनत करते रहना वो तो ठीक नहीं रहता है। अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाते हैं ना, उनको खुशी का पारा चढ़ा रहता है। क्योंकि याद करता रहता है और समझते रहते हैं कि मैं जो इतना याद करता हूँ, यह याद का औरों को भी इतना रास्ता बताता हूँ तो मुझे ऊंच पद जरूर मिलेगा। ये तो कोई भी स्टूडेंट हो स्कूल का, अच्छी तरह से सब्जेक्ट्स में पढ़ता होगा तो समझता होगा ना। और फिर पढ़ने वालों के मैनर्स भी होते हैं, कोई से लड़ना झगड़ना धक्का खाना ये करना झूठ बोलना चोरी करना फलाना करना, ऐसे भी तो ढेर बच्चे होते हैं ना। तो कोई के तो स्कूल में अच्छे मैनर्स होते हैं, अभी दुनिया तो सारी अंधेरे में है। कौन सा अंधेरा? अज्ञान के अंधेरे में है। जैसे गीता में लिखा है या निशा सर्वभूतानां, जो दुनिया सब प्राणियों के लिए आज अंधकार बन गई है। कौन सी दुनिया? अध्यात्म की दुनिया। सारी दुनिया के प्राणियों के लिए अज्ञान अंधकार है और कौन सी दुनिया में उनके लिए रोशनी दिखाई दे रही है। भौतिक दुनिया में रोशनी दिखाई दे रही है, पंचभूतों की दुनिया में, भौतिक दुनिया में कितनी कितनी रिसर्च कर रहे जिन पंचभूतों से ये शरीर बनता है। उस दुनिया में जिंदा है समझते हम, रोशनी में हैं, हम तरक्की कर रहे हैं। यहाँ तो बाप तुम बच्चों को बताते हैं वो पांच भूतों की दुनिया, भौतिक दुनिया, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, पांच भूत जिनसे ये शरीर बनते हैं, देह बनती है। ये देह तो विनाशी है, तो सारी दुनिया के प्राणी तुम्हारे मुकाबले घोर अंधियारे में हैं। भले कितना भी उनका तुम्हारे दिल में मान सम्मान हो, सो भी ये पिछाड़ी का तुमान है। इस भौतिक दुनिया से कोई जीवन तो नहीं बनना है। इस दुनिया के इन सारे बेचारे प्राणियों का जो अच्छे समझदार तुम बच्चों में ब्राह्मण हैं, वो तो इन बातों को जरूर समझेंगे। क्या है देखो किस दुनिया में ये कितने बड़े आदमी हैं, किस दृष्टि से देखो, भौतिकवादी दृष्टि से देखो या आध्यात्मवादी दृष्टि से देखो। भौतिक दृष्टि जिन पंचभूतों से ये विनाशी शरीर बना है वो दृष्टि तो एक जन्म से ही कनेक्टेड है, इसी जन्म से कनेक्टेड है। बाकी अध्यात्मवादी तुम्हारी जिंदगी है, अध्यात्म किसे कहा जाता है, अधि माने अंदर, आत्म माने आत्मा के अंदर, आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है। आत्मा एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का हिसाब किताब भरा पड़ा है, 84 जन्मों का पार्ट भरा पड़ा है। तो आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, 84 जन्मों के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी मनुष्य आत्मा 84 जन्मों के हिसाब से कितना बड़ा आदमी है। ये बात तुम बच्चे देखते हो। हाँ, ये एक बात बड़ी लगती है, कि कोई बाप को नहीं जानते। और नहीं जानते दुनिया के मनुष्य, वो तो अज्ञान अंधकार में है ही, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक है बेसिक नॉलेज लेने वाले, कैसे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे जिनकी बुद्धि बालिग नहीं बनी है, वो भी कहते तो हैं हम बाप को जानते हैं, बताते भी हैं दूसरों को कि हम आत्मा हैं और हमारा बाप आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव है, उसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है। हम जन्म जन्मांतर शरीर धारण करते हैं, इसलिए हमारे शरीरों का नाम है अलग अलग जन्मों में, इतना बताते हैं कि हम आत्माओं का बाप जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए उसका अपना शरीर नहीं बनता, वो सदैव ज्योति बिंदु है, उसकी बिंदी का ही नाम शिव है। परंतु उनसे पूछा जाए कि वो बिंदु जो सभी मनुष्य आत्माओं का बाप है, वो कौन है? आप कहते हैं कि आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो कैसे माने? किसे माने, किसे जाने कि वो ज्योति बिंदु शिव सुप्रीम सोल जिसे हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वो कौन है? तो क्या जवाब देंगे वो बेसिक नॉलेज वाले बच्चे, क्या जवाब देंगे? कहेंगे दादा लेख राज ब्रह्मा, उनके तन में शिव ज्योति बिंदु आते हैं और ज्ञान की मुरली सुनाते, तो वो दादा लेख राज ही ब्रह्मा के रूप में नाम रूप से गीता का साकार भगवान है, यही बतावेंगे। साथ साथ ये भी बताते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्मा है, जिस कृष्ण का शास्त्रों में भगवान के रूप में बहुत गायन है, बहुत भक्ति 2500 साल से चली आ रही है, ये वही आत्मा है जो कलयुग के अंत में कलाहीन दाढ़ी मूछ वाला विकारी मनुष्य बन जाता है, दादा लेखराज ब्रह्मा। फिर उनसे पूछा जाए, आप तो कहते हैं कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, फिर आप कैसे कहते हैं कि दादा लेखराज वाली आत्मा जो कृष्ण वाली आत्मा है वो गीता का भगवान है? ये तो दो बातें हो गई। गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा अगर हो सकती है तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण और सतयुग में होती भी हैं 16 कलाएं। वो 16 कला संपूर्ण बनाने वाला है या बनने वाला है? दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा तो बनने वाले को भगवान कहे या बनाने वाले को भगवान कहे? तो ये बात तो झूठी हो जाती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा जो कृष्ण की सोल है वो ही गीता का भगवान है। निराकार है, उसकी आत्मा का नाम शिव है जो कभी बदलता ही नहीं। ये तो कृष्ण नाम बदल गया, दादा लेखराज भी नाम बदल गया, सतयुग के आदि का भी नाम बदल गया और कलयुग के अंतिम जन्म का भी नाम बदल गया। तो ये तो साबित नहीं हुआ कि कृष्ण वाली आत्मा शिव है। इसे साबित होता है जो बाप ब्रह्मा का मुख लेकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं वो गीता ज्ञान सुनाने वाला बाप शिव कौन से मनुष्य तन के द्वारा इस सृष्टि पर आकर के संगम युग में मुकर्रर पार्ट बजाता है? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल तो शरीर छोड़ करके 18 जनवरी 69 को चली गई, मुकर्रर शरीर कहाँ रहा? वैसे भी ब्रह्मा नाम तो तब पड़ता है जब शिव उनमें प्रवेश करते हैं, जो बोला भी है ब्रह्म वाक्य में कि मैं प्रवेश करता हूँ, जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म रखता हूँ। तो कब से नाम ब्रह्मा विख्यात हुआ? सन 36-37 में तो नाम विख्यात नहीं हुआ, सृष्टि के आदि में। उस समय तो ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय था? वो ओम मंडली पाकिस्तान बनने से पहले खलास हो गई और ब्राह्मणों का नया संगठन शुरू हुआ। संगठन का नाम संगठन के मुखिया के आधार पर पड़ा, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये नाम कब से उजागर हुआ? जब ब्रह्मा कुमारियों का सारा संगठन कराची से उठ के माउंट आबू आया, और ये भी बताया ब्रह्म वाक्य में मुरली में कि मैं शिव भगवान के रूप में इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ, तो पता कैसे चलता है इनमें बाप भगवान है? कैसे पता चलता है? जब ज्ञान सुनाते हैं। तो दादा लेखराज ने पहले तो ज्ञान नहीं सुनाया, पहले तो बताया गया ब्रह्म वाक्य में ही, बताया गया मुरली में, बताया गया कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें बाप भगवान प्रवेश करते थे। तो साबित हो जाता है कि दादा लेखराज ब्रह्मा से भी पहले कोई और थे जो ज्ञान सुनाने वाले थे, योग की ड्रिल कराने वाले थे। उनमें दो माताओं का नाम तो जब तक ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय शुरू हुआ संगठन के रूप में, तब तक उनका कार्य उनके द्वारा चलता रहा। बाद में बताया कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ, माना 1947 में जब पाकिस्तान बना तो ब्रह्मा को भी ज्ञान देने वाली उन माताओं ने शरीर छोड़ करके जन्म ले लिया। और मुरली में तो शिव भगवान बाप ब्रह्मा के तन से बोलते हैं कि ब्रह्मा का बाप कौन, पूछते हैं तो कोई होगा ना। तो जरूरी है कि आदमी कोई माता पिता के रूप में थे जिन्होंने ब्रह्मा को भी ये एहसास पक्का करा दिया कि तुम्हें ब्रह्मा के रूप में सफेद पोशधारी के रूप में पार्ट बजाना है। तुम्हारे साक्षात्कारों का यही अर्थ है कि तुम्हें आगे चल करके नई दुनिया में कृष्ण का जन्म लेना है, षष्ठी वृक्ष के पहले पत्ते का जन्म लेना है। तो साबित हो जाता है कि इस बात का एहसास कराने वाला, निश्चय कराने वाला, ज्ञान का बीज डालने वाला, जरूर कोई बाप और था साकार रूप में, जैसे शिव बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आत्मा का एहसास कराता हूं, आत्म की स्मृति दिलाता हूं। उससे पहले तुम अपन को देह समझते थे कि हम देह हैं, देह के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा नहीं है, देह के रूप में परिचय देते थे। कोई पूछता था आप कौन है, कहेंगे मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं नौजवान हूँ, औरत हूँ, आदमी हूँ, देह का परिचय देते थे ना। तो जब आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आया तो उन्होंने हमको एहसास कराया आत्मा का, मना ज्योति बिंदु आत्मा का जन्म दिया। वो आत्माओं का बाप आत्मिक स्मृति करा करके आत्मा का जन्म देने वाला है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में दादा लेखराज को नई दुनिया सत्ययुग का पहला प्रिंस के रूप में एहसास कराने वाला कोई जरूर होना चाहिए। क्योंकि बाप ही बच्चों को जन्म देता है माता के द्वारा। ये शूटिंग का टाइम चल रहा है, 5-4 वर्ष की दुनिया का रिहर्सल का टाइम चल रहा है, रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है। यहाँ जैसी शूटिंग रिकॉर्डिंग होगी वही ब्रॉड ड्रामे में 5000 वर्ष तक चलेगी। तो यहाँ सृष्टि के जो पहले प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण हैं, उनको जन्म देने वालों का परिचय भले नहीं मिलता है, लेकिन जो जन्म लेने वाले हैं उनको परिचय देने वाली वो आत्माएं साकार में प्रैक्टिकल में एहसास कराती हैं, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देकर के, और उनको प्रैक्टिकल में साक्षात्कार होते हैं इसलिए उनको पक्का निश्चय बैठ जाता है। तो साबित हुआ कि चाहे दादा लेखराज ब्रह्मा हो, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का प्रणेता, चाहे उनके फॉलोअर्स ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, जो ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ के रूप में इस संसार की बड़े से बड़ी माँ सहनशील बच्चों को बेसिक नॉलेज देती है छोटे छोटे बच्चे माँ को ही बड़े से बड़ा शिक्षक समझ कर बैठते हैं। तो देखो तो ब्रह्मा माँ के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी ब्रह्मा से बेसिक नॉलेज लेने वाले कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा निराकार हूँ, मेरा बाप ज्योति बिंदु निराकार बाप है, ये बेसिक नॉलेज लेते हैं, ये नहीं जानते कि वो निराकार शिव ज्योति बिंदु किस निराकारी मनुष्य आत्मा में आवेश करके शरीर रूपी रथ को मुकर्रर रूप से कंट्रोल करता है। मुरली ने तो बताया है टेम्परेरी रथ और मुकर्रर रथ तो साबित हो जाता है, जो बीच में प्रत्यक्ष हो और बीच में ही चला जाए तो मुकर्रर रथ हुआ या टेम्परेरी रथ हुआ, टेम्परेरी हुआ। दादा लेखराज ब्रह्मा जिनके नाम पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आरंभ हुआ 1947 से पहले उसका कोई नाम निशान नहीं था, के बाद मुरली चलाना शुरू किया। तब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भी एहसास हुआ कि जरूर भगवान इनके तन में आकर ज्ञान सुनाता है, ऐसा नया ज्ञान दुनिया में किसी ने नहीं सुनाया। लेकिन जो भी ज्ञान सुनाया गया उस गीता ज्ञान के बारे में शिव की आत्मा ने स्वयं ही बोल दिया ब्रह्म वाक्य कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या गीता ज्ञान अमृत बड़ी बात या गीता ज्ञान बड़ी बात? अमृत पीकर देवता बनते हैं, विष पीने से मनुष्य या राक्षस बनते हैं। गीता ज्ञान जो ब्रह्मा मुख से मिला उसे पढ़कर सुनकर सुनाकर दूसरों को पढ़ाकर कोई भी आज तक देवता नहीं बना, कोई भी ब्राह्मण नहीं बना। संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, वो ब्राह्मण पुरुषार्थ करके संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। लेकिन ज्ञान सुनकर लेना, दूसरों को सुनाते रहना, इसे ज्ञानामृत कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सुन तो लिया लेकिन जो महावाक्य भगवान के सुने उन पर गहराई से मनन चिंतन मंथन नहीं किया, तो जब तक कोई बात को, कोई ईश्वरीय महावाक्य को, कोई ईश्वरीय शब्दों को गहराई से समझा नहीं जाएगा तो दूसरों को गहराई से समझाए भी नहीं सकते। तो ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्मा के मुख से भगवान शिव निराकार आकर के जो वाणी सुनाते हैं, जिसे भक्ति मार्ग में मुरली कहा गया है। क्या कहा गया? मुरली। काहे की मुरली? काठ की मुरली ना, काठ की मुरली बताया गया भक्ति मार्ग। क्यों काठ की मुरली? क्यों? क्योंकि जो भी वाणी चली वो कठबुद्धि के द्वारा चली, इसलिए काठ की मुरलिया कही गई। जो स्वयं कठबुद्धि है, काठ की बुद्धि है, वो दूसरों को भी कठबुद्धि बनाएगा या मनन चिंतनशील बनाएगा। तो जो भी बेसिक नॉलेज मात्र लेने वाले बच्चे हैं आज तक भी, वो सब कठबुद्धि से, कठबुद्धि के मुख से निकली हुई वाणी को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। इससे जास्ती कुछ नहीं। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे और उनके मुख से जो भी सुनाया गया वो गीता ज्ञान मात्र था, सुनने सुनाने की चीज थी। जैसे भक्ति मार्ग में होता है 5,500 वर्ष गीता सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। उसका पूरा पूरा क्लैरिफिकेशन आज तक कोई ने नहीं दे पाया, और कोई कोई ने व्याख्या की भी है तो एक विद्वान की व्याख्या दूसरे विद्वान की व्याख्या को काटने वाली है। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक हैं, भगवान अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म दूसरी यो नास्ति, एक ही भगवान है, एक ही आत्मा है, दूसरी कोई है ही नहीं। तो देखो कितना विरोधाभास हो जाता है, परंतु इस विरोधाभास को समझाए भी नहीं सकते। इसी तरह जो ब्रह्मा मुख से मुरली चली उसके अर्थ ब्राह्मणों ने अपने अपने तरीके से निकाल लिए। जबकि शिव बाप कहते हैं, मेरे लिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव, मेरे सारे संबंध तुम्हारे साथ। माता का भी संबंध भगवान के साथ, पिता का भी संबंध भगवान के साथ, और टीचर का भी संबंध भगवान के साथ, सदगुरु का भी संबंध भगवान के साथ। और भगवान ही ब्रह्मा मुख से वाणी में कहते हैं कि बाप, टीचर और सदगुरु, ये तीनों पार्ट एक के हैं। क्या? एक के द्वारा बजाता हूं, दो नहीं है, तीन नहीं है। कि बाप अलग हो, टीचर अलग हो और सदगुरु अलग हो, वही बाप है, वही आत्मा सुप्रीम टीचर है, वही आत्मा सदगुरु है। तो इससे साबित होता है कि ब्रह्मा ने तो सिर्फ माँ के रूप में पार्ट बजा के छोड़ दिया। जो माँ की विशेष क्वालिटी संसार में आज भी देखी जाती है, क्या गुण देखा जाता है माताओं में? सहनशीलता। वो सहनशीलता का आधार ओल्ड इज गोल्ड माता भगवान ने जिसके तन में प्रवेश करके माता का पाठ बजाया वो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा बूढ़े शरीर के द्वारा माता का पाठ बजाने वाली मात्र थी। ज्ञान का बीज डालने वाली माता नहीं हो सकती। माता में ज्ञान का बीज डालने वाला कोई बाप और था जिसने ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का सारा क्लेरिफिकेशन दिया, वो ही ज्ञान का बीज है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज साकार मनुष्य ही हो सकता है। वो साकार मनुष्य साकार में पहले मां को ग्रहण करता है, मां की रचना करता है। इस ब्राह्मणों की दुनिया में त्रिमूर्ति शिव जो कहा जाता है, शिव की तीन मूर्तियां, उनमें सबसे पहले शिव ने कौन सी मूर्ति को प्रत्यक्ष किया ब्राह्मण बच्चों के सामने है? ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष किया। दुनिया में भी देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे पहले कौन से संबंध को मानते हैं, जानते हैं, महत्व देते हैं? मां को देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी तक भी जो अबोध बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है कि वो मनन चिंतन मंथन करके कोई बात का गहरा अर्थ निकाले, जैसे बेसिक नॉलेज लेने वाले प्राइमरी स्कूल के बच्चे कबीर दास के, तुलसीदास के, रहीम दास के कवित्त दोहे पढ़ते तो हैं, रट तो लेते हैं, लेकिन उनका गहरा अर्थ नहीं जानते। जब वो ही दोहे हायर क्लासेस में पहुंचते हैं BA MA में, तो उन दोहों का, कवित्त का कितनी लंबी लंबी व्याख्या आ जाती है बुद्धि में। ऐसे ही है, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा कवि गीता का, गीत ज्ञान का गाने वाला सुप्रीम सोल शिव है। उसने गीता का गीत गाया, गीता ज्ञान दिया, उस गीता के गीत में जो रहस्य भरा हुआ है उस रहस्य को कह समझे कवि, कह समझे रवि, क्या ऊंचे से ऊंचे कवि की भाषा को, गहराई को या तो समझेगा जिसने वो कविता रची। किसने रची? दादा लेखराज ब्रह्मा ने रची। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने वो ज्ञान का गीत नहीं गाया। किसने गाया? उसमें प्रवेश होकर के निराकार शिव ने गाया। वो निराकार शिव की आत्मा ही कोई दूसरे मनुष्य तन में प्रवेश करके फिर सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाती है और क्लेरिफाई करती है सीढ़ी दर सीढ़ी। जैसे कक्षा 5 पास करके जूनियर हाई स्कूल पढ़ते हैं, हाई स्कूल पढ़ते हैं, उच्चतर माध्यमिक स्कूल पढ़ते हैं, फिर बीए एमए पढ़ते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, क्रम से आगे बढ़ते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मा दादा लेखराज के द्वारा माँ का पार्ट बजाने के बाद सुप्रीम सोल शिव निराकार कोई मुकर्रर रथ वाली आत्मा में ही प्रवेश करके, जो आदि में भी थी, मध्य में भी होती है और अंत में भी रहेगी, उस आत्मा के मुकर्रर शरीर के द्वारा क्लैरिफिकेशन देते हैं। बाप का क्लैरिफिकेशन, इस मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता का भी कोई बाप है या नहीं? शिव बाप। प्रजापिता को निराकारी बाप से निराकार वर्षा मिलता है या साकार वर्षा मिलता है? क्या ज्ञान का वर्षा मिलता है? निराकार बाप होगा तो निराकारी वर्षा देगा, साकार बाप होगा साकार वर्षा देगा। बाप धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, बाप जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा, ऐसे ही है ना। तो शिव बाप, बाप तो है, बाप माना ही वर्षा, वो बाप क्या जो अपने बच्चे को कुछ भी दे करके न जाए। तो सुप्रीम सोल तो ऊंचे से ऊंचा करतार, ऊंचते ऊंच आत्मा है, लेकिन निराकार आत्मा, निराकार आत्माओं का बाप तो क्या देता होगा? निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा, ज्ञान का निराकारी वर्षा मनुष्य आत्माओं को मिलता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि प्राणियों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन करके असलियत को नहीं जान सकते। आत्मा तो है दूसरे प्राणी भी, लेकिन ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ सकते। अरे मनुष्य सृष्टि में ही मनुष्यों के दुदमुहे बच्चे, नाबालिग बच्चे जिनकी बुद्धि बालिग नहीं बनती है, वो भी गहराई को नहीं समझ सकते, तो दूसरे प्राणी कैसे समझेंगे? मनुष्य ही है जो मन का उपयोग करने के कारण मनुष्य कहा जाता है, मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य है। जो मन का उपयोग न करे वो तो जानवर है। तो देखो, एक नाम शास्त्रों में भी मनु चला आ रहा है, ये सारी मनुष्य सृष्टि मनु की संतान है। मनु के बच्चे मनुष्य कहे गए, मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला मन, और उसके बच्चे मनुष्य। श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ व्यवहार करें तो मनुष्य में ऊंचे देवता, घृष्ट कर्म घृष्ट व्यवहार करें तो मनुष्य से नीचे उतर करके राक्षस दुखदाई। तो इस मनुष्य सृष्टि में जब भगवान आते हैं तो मनु के द्वारा मनन चिंतन मंथन का कार्य कराते हैं, और मनन चिंतन मंथन करने वाले जो भी बच्चे पैदा होते हैं आत्मा का मनन चिंतन मंथन करने वाले, आत्मा के अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जान लेने वाले वो मनुष्य कहलाते हैं। जो भगवान बाप कहते हैं आत्मा पार्टधारी है, वो पार्टधारी कैसा जो अपने पार्ट को ही न जाने, भूल जाए, बेवकूफ या बुद्धिमान। तो देखो इतना तो हमने जान लिया कि हम आत्मा हैं, ये बेसिक नॉलेज तो ले ली, लेकिन क्या ये जान गए कि हम आत्मा ने इस 5000 वर्ष के ड्रामा में किस किस जन्म में क्या क्या पार्ट बजाया? पार्टधारी है ना, तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरा जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट है। तो जानते हैं
हैं?
नहीं जानते। तो वास्तव में क्या मनु के बच्चे बने हैं मनुष्य? जिस मनुष्य जन्म के लिए गाया हुआ है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ये मनुष्य जन्म गाया हुआ है, तो कौन सा मनुष्य जन्म गाया हुआ है? है 63 जन्मों में जो मनुष्य का जन्म लेते रहे वो, या भगवान इस सृष्टि पर जब उतरता है तो मनु के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचता है, उस जन्म की बात है, है? पूर्व जन्म की बात है। वास्तव में मनुष्य तो इसी जन्म में बनते हैं जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, जो मनुष्यों को मनन चिंतन मंथन असलियत आत्मा का सिखाता है। आत्मा ही असली चीज है, शाश्वत है, सदाकाल है। तो जो अविनाशी आत्मा है उसका मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, या देह के 5 तत्वों का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए? आत्मा का करना चाहिए। तो भगवान कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर आता है तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी हीरो आत्मा है शिव बाप, सुप्रीम सोल निराकार आत्मा का बड़ा बच्चा है, जो पहले पहले अपन को प्रैक्टिकल में आत्मिक स्टेज में स्थिर कर लेता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जिसके लिए इसी सीजन की अव्यक्त वाणी में इशारा दिया 5 दिसंबर को असली स्मृति दिवस कहेंगे। जब बाप और बच्चे का मिलन हुआ था 18 जनवरी, असली स्मृति दिवस नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? है? 18 जनवरी किसका स्मृति दिवस मनाते हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा, उनके शरीर छोड़ने का जो दिन है उसको स्मृति दिवस मना लिया। ये समझ करके कि वो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा शिव के साथ मिलकर के एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई, माने संपन्न बन गई। अब बाप तो कहते हैं मैं इस सच्ची पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। क्या बना के जाता हूं? आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो शिव बाप के समान जो आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगी, आत्माभिमानी पक्का बनेगी, तो मृत्यु के गाल में जाएगी। वाणी में तो बोला हुआ है कि शिव का जन्म तो है लेकिन मृत्यु कहां गाई हुई है? गाई हुई है नहीं? शिव इस सृष्टि पर आता है और आकर के हम बच्चों को आप समान बनाता है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो कोई बच्चा तो अव्वल नंबर में निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनता होगा, हैं? कौन बनता है? जो मुरली में बोला, कहते हैं देव देव महादेव ब्रह्मा देव विष्णु देव उससे भी ऊपर महादेव, तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव हुआ, जो देवताओं में बड़े से बड़ा देवता हुआ। जो बोला है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनता है, वही पहला क्षत्रिय, वही पहला वैश्य, वही पहला शूद्र। इस सृष्टि पर जो अव्वल नंबर है, पहला है, वही बड़ा हुआ या कोई दूसरा बड़ा हुआ? जो अव्वल नंबर है उसको मुसलमान भी गाते हैं आज तक, अल्लाह अव्वल दीन। क्या कहते हैं? अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। इस सृष्टि का अव्वल नंबर धर्म मुसलमान भी मानते हैं। इस्लाम धर्म से भी पहले कोई और धर्म था भारत में, और उस व्यक्तित्व का नाम भी लेते हैं जो सृष्टि का आदि पुरुष था, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में मानते भी हैं, जानते नहीं गहराई से कि वो कौन था। ये पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठा है कि वो आदम ही आदि सनातन अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है। वो आदम जिसके लिए मुसलमान आज भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो दो अलग अलग आत्माएं हैं। हिंदुओं में उसे आदिदेव आदिनाथ कहते हैं, जैनियों में वो आत्मा जो खुद आता है जिसका नाम दिया खुदा, खुदा माने खुद आया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपने अपने मंदिरों में गिरजाघर में गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं। क्या वो आता है? है? नहीं आता। उसे जब आना है तो खुद ही आता है, किसी के बुलाने से याद करने से नहीं आता। तो वो खुदा आदम नहीं है। क्या आदम नहीं है? आदम की आत्मा अलग और खुदा की आत्मा अलग। वो खुदा को निराकार मानते हैं, साकार मानते हैं या निराकार? निराकार मानते हैं। तो जो सदैव निराकार है इस सृष्टि पर पहले पहले आदम में आता है, जिसे हिंदुओं में आदि देव कहते हैं। तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, आदिदेव शंकर कहते। लेकिन हिंदुओं ने भी गड़बड़ कर लिया। क्या गड़बड़ कर दिया? शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। और मुसलमानों ने ये बात जान ली तो उन्होंने खंडन कर दिया, आदम को खुदा मत कहो, माने शंकर खुदा नहीं है, आदिदेव खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से वो जुदा भी नहीं अलग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद आता है सृष्टि पर और कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। तो जैसे खुदा जिसे हम शिव कहते हैं, आत्मा का ही नाम शिव, वो निराकार आत्मा खुद ही आदम के तन में कहती है कि मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। इसका मतलब वो बच्चा खुदा है या खुदा का नूर है? है? खुदा का 100% नूर है या अधूरा नूर है? 100% नूर है, परंतु खुदा नहीं। जैसे कोई बाप है, बाप के 10 बच्चे हैं और बाप या दुनिया का कोई भी राजा अपने बड़े बच्चे को राजकाज देकर जाता है। और भारत में उस बड़े बच्चे को, बड़े भाई को बाप समान मानते हैं। बाप समान मानते हैं या बाप मानते हैं? तो यही बात मुसलमानों ने भी कही। क्या कही? आदम जो है वो खुदा का बड़े से बड़ा बच्चा है, जिस बच्चे को खुदा ने आकर के ज्ञान का अखूट भंडार दिया। क्या? अखूट भंडार दिया। अखूट भंडार लेने वाला खुदा के समान हुआ या खुदा बन गया? खुदा के समान हुआ। दुनिया में कोई भी बच्चा अपने परिवार में बड़े भाई को बाप नहीं कहता, क्या ये मानता है कि बड़ा भाई बाप समान होता है, यही मानते चले आए? तो ये परंपरा कहां से चली? संगम युग में भगवान बाप खुदा आते हैं तो ये परंपरा शुरू करते हैं। क्या? कि बाप के बच्चों में जो बड़ा बच्चा है वो बाप की मिल्कियत का मालिक है, बाप समान बनता है, मिल्कियत का वारिसदार बनता है। और भाइयों में वो बाप समान माना जाता है। खुदान खास्ता बाप चला जाए तो जो भी परिवार के बच्चे हैं छोटे मीडियम, वो सब बच्चे उस बड़ा भाई को बाप समान मानते हैं, बाप की तरह रिगार्ड देते हैं। जैसे बाप के नक्शे कदम पर बच्चे चलते हैं, उन्हीं नक्शे कदम पर परिवार के छोटे बच्चे चलते हैं। ये प्रथा आज भी भारत में कोई कोई बिरले परिवार देखने को मिलते हैं। खास करके दक्षिण भारत में जो बाबा कहते हैं देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, माने बहुत करके लुप्त हो गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों का मुखिया भगवान के समान माना जाता है। कोई की मजाल नहीं परिवार के अंदर जो उस मुखिया को क्रॉस करे, हो नहीं सकता कि उस संयुक्त परिवार संगठित परिवार को कोई तोड़ सके। सबकी एक भाषा, दो दो भाषाएं तीन तीन बातें नहीं बोलेंगे। जो परिवार का मुखिया बोलेगा वो ही बात सब बोलेंगे। परिवार का मुखिया जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली बातें बोलेगा तो पूरा परिवार जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली बातें बोलेगा। भाषा एक होगी, धारणाएं एक होंगी, धर्म भी एक होगा, धर्म ग्रंथ की मान्यता भी एक धर्म ग्रंथ की होगी। ऐसी ऐसे संगठित परिवार आज भी कहीं न कहीं भारत में ढूंढने से मिल जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई धर्म समूल नष्ट नहीं होता जब तक विनाश न हो। महामृत्यु का समय न आए तब तक तो इसे साबित ये हुआ कि शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के अपना बड़ा बच्चा जो बाप की प्रॉपर्टी को पुरुषार्थ करके ग्रहण करता है, बाप देता है या बच्चा पुरुषार्थ करके लेता है? पुरुषार्थ करके लेता है। अगर ये कहें कि बाप देता है तो पार्शियलिटी साबित होती है, पक्षपात साबित होगा। जो बाप खुदा है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, वो पार्शियलिटी कैसे करेगा? वो तो कहता है मेरे पास जो भी संपत्ति है ज्ञान की, वो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, किसी को स्पेशल अलग बिठा करके ट्यूशन नहीं देता। देता है?
नहीं
देता। सबको एक जैसा बांटता है, लेने वाले ले या न ले। तो लेने वाले बच्चों में जो बाप का बड़ा बच्चा है, वो पुरुषार्थ करके, किस बात का पुरुषार्थ करके? पहला पुरुषार्थ किस बात का? हमारे ब्राह्मणों के विद्यालय में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कौन सा पहला सब्जेक्ट है? ज्ञान। चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहला सब्जेक्ट ज्ञान। तो जो पहला सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का फाउंडेशन बहुत पक्का होगा, जिसका ज्ञान जितना गहरा होगा वो उतना ही ऊंचे पद पाएगा। क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही बाप की पहचान होती है, और बाप को जो जितनी गहराई से जानेगा, वो बच्चा उतना ही ऊंच पद का अधिकारी होगा। ऐसे नहीं है कि माला रूपी संगठन में नई दुनिया जब बनती है तो भगवान बाप ऐसे ही ये ऊंचा मन का, ये नीचा मन का, ये दाई ओर का, ये बाई ओर का बाप बना देता है। नहीं, अपने अपने पुरुषार्थ से हर आत्मा अपना पद निश्चित करती है। इसलिए कहा जाता है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है, तो ब्रह्मा के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, तो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भगवान के दिए हुए ज्ञान की गहराई के ऊपर मनन चिंतन मंथन नहीं करती। करती है? नहीं करती। इसलिए शास्त्रों में उसका नाम हिमालय रखा गया है। क्या रखा गया? हिम माने बर्फ, आइस, आलय माने घर, आइस का घर, बर्फ का घर। बर्फ जब जम जाती है तो पत्थर जैसी कड़क बन जाती है। तो उसका जो, उस आत्मा का जो घर है, दिमाग रूपी घर है, वो क्या हो जाता है? कड़क बर्फ बन जाता है। बर्फ लिक्विड होती है या पत्थर की तरह जाम होती है? ज्ञान जल बहेगा, लिक्विड है, वही जल बर्फ बन जाएगा, बहेगा नहीं, ज्यों का त्यों पहाड़ के ऊपर रखा रहता है। तो दादा लेखराज वाली आत्मा, शास्त्रों में उसका नाम हिमालय रखा गया, हिमवान। वो सार्थक नाम है या निरर्थक नाम है? है?
सार्थक है, अर्थ सहित है। उस आत्मा ने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। मनन चिंतन मंथन करने न करने के कारण वो मनु की आत्मा नहीं कही जा सकती। तो जिस आत्मा ने भी मनन चिंतन मंथन का निमित्त मात्र पार्ट बजाया, वो आत्मा भारत के शास्त्रों में सांख्य शास्त्र का प्रणेता मानी गई। कौन है? कपिल मुनि, जिनके नाम पर कांपिल्य नगर बसाया गया। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या, आख्या माने व्याख्या, माना कोई भी बात को व्याख्या के आधार पर विस्तार से समझाना, उसको कहते हैं सांख्य। जो गीता है उसमें श्लोक तो हैं, जिस कवि ने वो श्लोक गाए उसने व्याख्या तो दी नहीं, दी है? व्याख्या नहीं दी। ये शूटिंग यहाँ होती है, शिव बाप ने आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा माता के रूप में, जो गीता माता के रूप में ज्ञान दिया, गीत गाया ज्ञान का, उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बच्चे सालिम बुद्धि नहीं बने थे। क्या? बालिग बुद्धि नहीं बने थे, बौद्धिक स्तर जैसा होना चाहिए वयस्क का, मैच्योर्ड बुद्धि नहीं थी। तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई तो मैच्योर्ड बुद्धि वाला बनेगा कि कभी बनेगा ही नहीं? बनेगा। इसलिए कहते हैं कि संसार रूपी जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। शेर रूपी राजा से जंगल कभी खाली नहीं रहता। तो त्रिमूर्ति में, आज भारत के झंडे में, अशोक की लाट में, नोटों में, वो तीन शेर आज भी यादगार दिखाई जाते हैं। किसकी यादगार? तीन शेर हैं इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले। कौन कौन? विष्णु और शंकर। तो उन तीनों की असली पहचान चाहिए। जो मुरली में बोला है ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। यथार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्रह्मा का चेहरा है वो विष्णु का चेहरा है, वो शंकर का चेहरा है। ध्यान से देखो, तीनों का चेहरा एक ही दिखा दिया। यही बात ब्रह्मा कुमारियां भी आज कहती हैं कि विष्णु और शंकर कोई अलग नहीं है, जो ब्रह्मा की आत्मा है वही ब्रह्मा सो विष्णु बनती है और वही ब्रह्मा की आत्मा शंकर बनती है। और मुरली में भी बाबा ने यही बात बोल दी। इस बात को पोषण करते हुए ब्रह्मा कुमारों ने अर्थ लगा लिया। आपने क्या बात बोल दी है? हाँ, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माना शंकर जैसे है ही नहीं, ये अर्थ लगा लिया। अरे करने धरने के लिए इंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? और शंकर इंद्रियातीत स्टेज पर पहुंचता है, इंद्रियों के कर्म के अतीत पहुंच जाता है, कर्मातीत अवस्था को पहुंचता है या कर्मेंद्रियों में फंसा रहता है? इसलिए कहा कि शंकर कुछ नहीं करता है इंद्रियों से। शंकर का जैसे कोई पार्ट ही नहीं, पार्ट तो इंद्रियों से बजाए जाते हैं, लेकिन चित्रों में जो चित्र और मूर्तियां चरित्र की यादगार हैं, क्या दिखाते हैं? क्या करते हुए शंकर को दिखाते हैं? याद में बैठे हैं। याद करने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत है? हैं? जरूरत ही नहीं। याद करने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, जो कोई स्थूल इंद्रिय है ही नहीं। ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है मन बुद्धि जो आंख से देखी जा सके, तो वो तो याद की शक्ति से सारा कार्य करता है। क्या मन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज निरंतर जब बन जाती है तो जो भी संकल्प करेंगे वो संकल्प तुरंत सिद्ध हो जाएगा। क्या संकल्प सिद्धि जिसे कहते हैं, कब होगा? जब मन बुद्धि की निरंतर एकाग्रता हो जाए एक ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर। मन बुद्धि भटकने न पाए, हिलने न पाए, अटल हो जाए, अचल हो जाए, जिसकी यादगार अचलगढ़ है। गढ़ माने किला। कैसा किला? संगठन का, ब्राह्मणों का ऐसा किला जिस संगठन में प्रत्येक ब्राह्मण की मन बुद्धि अटल एकाग्र हो जाए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो संकल्प सिद्धि हो जाएगी, मनमना भव हो जाएंगे। मना कौन कहता है मनमना भव? मनमना भव कहने वाली आत्मा कौन? मनमना भव कहने वाली वो ही आत्मा जिसमें शिव बाप पहले पहले प्रवेश करके ब्रह्म नाम देते हैं, वो है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म को मन है, शिव को मन नहीं है। तो जिसको मन है वो आत्मा कहती है। मत माने मेरे, मन माने मन में समाजा। तेरे मन में क्या है? क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तेरे मन में एक ही समाया हुआ है, ज्योति बिंदु। तो जो भी योगी हैं, शिव बाप के योग सीख करके, राजयोग सीख करके राजा बनने वाले बच्चे हैं, वो मनमना भव हो जाएं। मेरे मन में जो ज्योति बिंदु है उसी में सारा संकल्प समा जाए, दूसरा कोई संकल्प न उठे। नहीं समझ में आया? जब ऐसी स्टेज बन जाएगी निरंतर, तो बच्चे बाप के अनुकूल संकल्प करेंगे या प्रतिकूल संकल्प करेंगे? सारे संकल्प बाप समान चलेंगे। एक भी संकल्प मनमना भव होने वाली मनुष्य आत्मा का बाप के विरोधी नहीं चल सकता। तो संगठन एक हो जाएगा या संगठन में भेद पड़ेगा? एक संगठन हो जाएगा। जो बोला है तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा मजबूत हो जाएगा जिसके वाइब्रेशन में एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। विकारी, वि माने विपरीत, कारी माने कार्य करने वाला, विपरीत वाचा बोलने वाला, विपरीत दृष्टि रखने वाला, विपरीत संकल्पों के वाइब्रेशन छोड़ने वाला। इस संगठन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा तुम्हारी राजधानी रूपी संगठन तैयार हो जाएगा। तो ऐसी संपन्न राजधानी कंप्लीट आत्माओं की होगी या कोई कमजोर आत्मा भी उसमें हो तो चलेगा? कितनी आत्माएं होंगी कंप्लीट? है 16108 कंप्लीट हैं। उनमें कोई दास दासी बनने वाले नहीं है स्वभाव संस्कार से। है 108 राजा, उनमें कोई दूसरे धर्म में अगले पिछले जन्म में कन्वर्ट होने वाले राजा नहीं है? आठ आठ आत्माएं ऐसी हैं जो भक्ति मार्ग में आज भी कहीं मंदिर देखो पुराने पुराने, मूर्तियां देखो पुरानी पुरानी, सर के ऊपर वो आठ मणके रखे हुए हैं, आत्मिक स्टेज की यादगार। कौन? अष्टदेव। वो आठ आत्माएं, उनका माला रूपी संगठन एक हो जाएगा। एक स्नेह के धागे में बंधे हुए होंगे। स्नेह का धागा एक से कनेक्टेड होगा। ऐसी छोटी सी राजधानी स्थापन होगी, जिनको कहा जाता है जब इस संसार में भगवान आकर नई सृष्टि की नई राजधानी स्थापन करते हैं तो आठों दिशाओं के राज्यों को, आठों दिशाओं में फैले हुए धर्मों को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके लिए निमित्त बनते हैं आठ दिग्पाल। दिग माने दिशाएं, कितने? आठ दिग्पाल, दिशाओं को पालने वाले। चार दिशाएं तो मुख्य हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चार उनके कोने, कॉर्नर, आठ दिशाएं। उन आठ दिशाओं को पालने वाले आठ दिग्पाल जो आदि के जन्म से लेकर के अंत के जन्म तक एक बाप के सहयोगी बनकर रहते, सिर्फ मात्र अंतिम जन्म के अंतिम समय में माया जब फाइनल पेपर लेती है तो बाप की जो प्रकृष्ट रचना है प्रकृति, माया प्रकृति का सहयोग लेकर हाथ मिलाकर के बुद्धि का बहुत पावरफुल बन जाती है और उन आठों दिग्पालों को भी धराशायी कर देती है, उनको भी नहीं छोड़ती। फाइनल पेपर में ऐसी सशक्त आत्माओं को भी नहीं छोड़ती तो दूसरों को छोड़ेगी क्या? है नहीं छोड़ती। इसलिए माया ऐसी सशक्त है, ऐसी ठगनी है जो भगवान से भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आधा राज्य ले लेती है। क्या? आधा राज्य ले लेती। नई दुनिया का राज्य भगवान स्थापन करता है और पुरानी दुनिया का राज्य माया रूपी रावण राज्य रावण स्थापन करता है। तो देखो आज सारी दुनिया माया रावण के घोर अंधियारे में फंसी हुई है। क्या कहा? आप कहेंगे बाहर की 500-700 करोड़ दुनिया फंसी होगी घोर अंधियारे में, भगवान बाप के बच्चे थोड़े ही फंसे। भगवान बाप कहते हैं बच्चे त्रिमूर्ति में बाप का परिचय पहले दो, तो बेसिक नॉलेज वाले बच्चे क्या करते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र उठाया और उसमें परिचय देते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना और ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा, वो तो एक ही हो गया। अब ब्रह्मा वाली आत्मा ही शंकर बनती है तो ब्रह्मा ही सब कुछ है साकार रूप में, ब्रह्मा ही गीता का भगवान है साकार रूप, वो ये बाप का परिचय देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप में अगर कोई भगवान है तो कौन है? है ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा मुरली में आज भी कहते हैं, बच्चों को कहता हूँ त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो, परंतु बच्चे अपने ही टिक 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 करते रहते हैं, बाप का परिचय नहीं देते।
अरे
इसका मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बाप का परिचय नहीं दिया त्रिमूर्ति के चित्र में? नहीं दिया। ब्रह्मा ही अगर बाप होता, मनुष्य सृष्टि का बाप होता, मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी होता, तो ब्रह्मा के मंदिर होने चाहिए यादगार, ब्रह्मा की मूर्तियां होनी चाहिए, ब्रह्मा की याद होनी चाहिए। होती है? नहीं होती। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा त्रिमूर्ति में शिव की असली मूर्ति नहीं है। और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, लेकिन कौन सा ब्रह्मा विष्णु बनता है? बाप तो कहते हैं मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो क्या सन 47 से ही जिसमें प्रवेश किया वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा है? नहीं है। सन 36 में जिसमें प्रवेशता साबित होती है वो असली ब्रह्मा है अव्वल नंबर का, जिसे गीता में भी बोला है महत ब्रह्म, परम ब्रह्म। बोला है गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे ब्रह्मा को नमन नहीं करता हूं। तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा तो विष्णु भी अव्वल नंबर का हुआ। ब्रह्मा पंचमुखी भी गाया जाता है, चतुर्मुखी भी, चतुर्भुजी ब्रह्मा भी गाया जाता है। ब्रह्मा की जो चार भुजाएं हैं वो नीचे स्तर की हैं, भुजाएं अपने आप नहीं चलती, भुजाएं तो जड़ होती हैं, जड़ तुम्हारी बुद्धि, भुजाओं को चलाने वाली आत्मा ऊपर होती है। इसका मतलब विष्णु में जो चार भुजाएं हैं वो चार ब्रह्मा की यादगार हैं। जो पूरा मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते, बाप के स्वरूप को पहले पहले नहीं पहचान पाते, खुद भटकते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी भटकाते रहते हैं। वो चार भुजाएं निम्न स्तर की हैं विष्णु के रूप में, उनको चलाने वाला कोई ऊपर है। जो चलाने वाली आत्मा है वही आत्मा का नाम, भले पुरुषार्थी रूप में नाम है, वो शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई राक्षस नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। मन शंकर ही ऐसा पुरुषार्थी है जिसमें पुरुषार्थी रूप में तीन आत्माओं का संकरण होता है, मिश्रण होता है, तीन आत्माएं उस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है, तब शंकर है पुरुषार्थी रूप में। लेकिन तीनों आत्माओं का मिश्रण अलग और एक ही शुद्ध आत्मा सुप्रीम सोल बाप समान स्टेज धारण कर लेती है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई। गोल पत्थर लिंग और उसमें हीरा, वो हीरा किसकी यादगार?
हीरो पाटकर।
ब्रह्मा कुमारियों का क्या कहना है? शिव ज्योति बिंदु की यादगार। अरे शिव ज्योति बिंदु तो बोलता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूजी बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा लगा हुआ है वो शिव की यादगार है? नहीं है। ये हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है। हीरो पार्टधारी चारों सीन में पार्ट बजाता है, एक सीन में सिर्फ है, संगम युग में पार्ट नहीं बजाता। शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाता हो, बाकी ब्रॉड ड्रामा में पार्ट न बजाता हो, ऐसे तो होता नहीं। तो वो हीरा कौन है जिसके लिए मुरली में ही बोल दिया, इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज स्थाई नहीं, सदाकाल एक शिव बाबा ही है। तो सदाकाल का मतलब संगम में भी, सतयुग वाले फर्स्ट सीन में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और अंतिम सीन कलयुग में भी वो पार्टधारी हीरो पार्टधारी मौजूद रहता है। वो ही हीरो पार्टधारी आत्मा है जो कलाओं में सबसे पहले जीरो बन जाती है, गुणों में सबसे पहले जीरो बनती है कल्पांत काल में, और दुनिया का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है क्या? सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? है अपवित्रता। उस अपवित्रता में सबसे पहले वो ही आत्मा जो पहले नंबर का ब्राह्मण थी, पहले नंबर का देवता थी, पहले नंबर का क्षत्रिय थी, पहले नंबर का वैश्य थी, वो पहले नंबर का क्षुद्र नीच बन जाता है, विषपाई बन जाता है, जिसके लिए खास बाप कहते हैं बार बार, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। वो स्थूल बिख होता है जो स्थूल शरीर की मौत करता है, एक है बेहद का विष, स्थूल शरीर की मौत नहीं करता, लेकिन जो अविनाशी आत्मा कही जाती है वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाती है। कौन सा विष है? विकार, वि माने विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कार्य बताया, भगवान ने जो कार्य करके दिखाया मुकर्रर रथ के द्वारा, उस कार्य के विपरीत कार्य। भगवान ने क्या कार्य करके दिखाया? भगवान की यादगार क्या है कार्य करने की? है भगवान की यादगार है शिव का मंदिर, जिसमें शिवलिंग रखा हुआ है। इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रिय जो मानी जाती है काम इंद्रिय, जिसको जीतना बड़ा दुष्कर है। जो कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, वो ही कर्म करते वो यादगार रूप में शिव के मंदिर में दिखाया गया है शिवलिंग। कर्म तो काम इंद्रियों से कर रहा है, लेकिन उस कर्म में जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो, उस कर्म का रस लेने में लिप्त हैं। नहीं समझ में आया? लिप्त नहीं है, कर्म इंद्रियों की स्मृति ही नहीं है उस आत्मा को। कर्म तो करता है कर्म इंद्रियों से, आंख तो है लेकिन देखते हुए नहीं देखता, कान तो है लेकिन दुनिया सारी एक तरफ ग्लानी करती है, एक एक तरफ होकर, लेकिन ग्लानी को सुनते हुए नहीं सुनता। ऐसे ही हर एक कर्म इंद्रिय का हिसाब है। उन कर्म इंद्रियों से कर्म तो करता है लेकिन करते हुए भी अकर्ता है, वो भी अकर्ता कि करता, वो भी अकर्ता। और वो इस सृष्टि पर आकर आप समान बना के जाता है, तो जिसको अव्वल नंबर में आप समान बनाता है वो भी अकर्ता। वो भोक्ता या अभोक्ता है? अभोक्ता। वो अभोक्ता इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है तो उसको भी अभोक्ता बना देता है, जिसकी यादगार शिवलिंग है। वो आत्मा कहती है क्या? कहती है कि न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। ये जो लिंग है मंदिर में यादगार, वो मेरी यादगार नहीं है। कौन कहता? शिव कहता। न मेरी यादगार है न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। पूज्य वो बनता है जो पूजनीय कर्म करता है। पूजनीय कर्म क्या है? पूजनीय कर्म यह है पवित्रता 100%। 100% पवित्रता धारण करेंगे तो दुनिया में 100% पूजा तुम्हारी होगी। नंबरवार पवित्रता धारण करेंगे तो नंबरवार पूजा तुम्हारी होगी। देवी देवताओं की पूजा को देखो, एक जैसी पूजा है या अलग अलग प्रकार की पूजा होती है? शिव की पूजा सार्वभौम है, सारी पृथ्वी पर खुदाइयां हुई उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती निकली। आज भी दुनिया में, विदेशों में, देशों में शिवलिंग के मंदिर सबसे जास्ती बने हुए, तो किसकी यादगार
है?
शिव की यादगार या शिव समान की यादगार? शिव समान की यादगार। जो शिव समान बनता है वो ही जीवन मुक्ति का दाता है। जीवन में रहते मुक्ति देने वाला पिता, पिता स्वयं भोगता है तो बच्चों को भी वो भोग प्रदान कर सकता है। स्वयं नहीं भोग सकता तो बच्चों को भी नहीं दे सकता। बाप जो प्रॉपर्टी स्वयं अर्जित करता है वो स्वयं अर्जित की हुई प्रॉपर्टी बच्चों को देता है। स्वयं अर्जित नहीं कर सकता, स्वयं धारण नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को भी नहीं दे सकता। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता कौन हुआ? जो स्वयं पहले मुक्त होता है वो ही सारी मनुष्य सृष्टि का मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप। ज्ञानदाता नहीं है? ज्ञानदाता है? ज्ञानदाता नहीं है। ज्ञान देने के संबंध में वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि ये ज्ञान मेरा है, मैंने ये ज्ञान अर्जन किया। भले सारा मनन चिंतन मंथन उस आत्मा के द्वारा ही होता है, लेकिन वो आत्मा जानती है कि जो भी मनन चिंतन मंथन हुआ उसका आधार ब्रह्मा की वाणी है या बिना वाणी के मनन चिंतन मंथन हो गया। और ब्रह्मा की वाणी जो है वो सुप्रीम सोल की वाणी है या देहधारी मनुष्य की वाणी है? तो असलियत में जो सबसे बड़ी पावर है दुनिया की वो क्या है? सबसे बड़ी दुनिया की पावर है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य मनुष्य सृष्टि के हीरे पाटधारी को स्वयं ही नहीं मिल जाती, किससे लेता है? है वही सत्यम शिवम सुंदरम, उससे लेता है सत्य। उससे सत्य लेकर सबसे बड़ी पावर धारण करता है। वो है अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अंदर का ज्ञान, तीनों काल का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान के सभी जन्मों का ज्ञान। नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम विद्यते, गीता में भी लिखा है, ज्ञान के समान पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और पवित्रता ही, ये सत्य ही गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। क्या ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। ये सत्य ही हर मनुष्य मात्र के अंदर जो आत्मा है उस सत्य को परसेंटेज में धारण जरूर करती है। जिस सत्य की शक्ति से वो अपने जन्म के पार्ट को जान सकती है, वो ही सत्य की शक्ति जन्म जन्मांतर हर एक पुरुष में रहती है। जिस सत्य की शक्ति को हद में, वेद में है सत्य की शक्ति और हद में मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर क्या सत्य है, वीर्य। उस सत्य वीर्य की शक्ति को जो कन्याएं माताएं धारण करती हैं वो सती कही जाती है। क्या सच्चाई से धारण करती है या झूठी बनकर धारण करती है? सच्चाई से धारण करती है। अगर थोड़ा भी झूठ का अंश आया, जैसे कोई भोजन करता है, भोजन करते समय किसी ने ऐसे लेकर के मुंह डाल लिया और उंगली डाल दी तो झूठा हुआ या नहीं है? झूठा हो गया। ये धरणी रूपी माता भी कोई धरणी कलराठी होती है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, और कोई धरणी बड़ी फलीभूत होती है, बहुत कुछ फल देती है, और ऐसा फल देती है जिसमें कीड़े मकोड़ों का नाम निशान नहीं पड़ता। जैसे सतयुग में धरणी थी, फल फूलों में कीड़े पड़ते थे, है? नहीं पड़ते थे। क्यों? जो धरणी थी वो सत्य को धारण करने वाली थी, जिसे असत्य कहा जाता है, झूठ कहा जाता है, वो झूठा धारण नहीं करती थी, सत्य को धारण करने वाली सती थी। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती थी, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती थी। राधा कृष्ण की सात्विक जो सत्य की शक्ति थी वो धारण करती थी। माने विचार, उसको कहते हैं सफेद झूठ। क्या पराई स्त्री या पर पुरुष का भोग ये झूठ है, सच्ची बात नहीं है। सत्य से सुख होगा या दुख होगा? है सुख होगा। अगर सती में सत्य नहीं रहा किसी ने झूठा कर दिया तो सती रही या कुलक्षणी हुई? कुलक्षणी हो गई। परिवार में दुख पैदा कर देगी या सुख पैदा कर देगी? दुख पैदा कर देगी। तो सार क्या निकला? सत्य को धारण करना है या झूठ को धारण करना है? सत्य को धारण करना। और सत्य एक होता है या दो चार होते हैं? इसलिए भारत में ये परंपरा है, क्या? पति परमेश्वर। कब परमेश्वर? पति परमेश्वर कब? जब सत्य को धारण करने वाली धरणी सत्य हो, सच्ची हो, पर पुरुष से आंख लड़ाने वाली या इंद्रियों का सुख लेने वाली न हो। इसलिए कहते हैं स्त्री घर की सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की धरणी धरित्री कुलक्षणी हो तो घर नरक बन जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो धरणी रूपी माता को शुद्ध बनाकर जाता हूं। क्या? शुद्ध बनाकर जाता हूं। कैसा? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये धारणा पुरुष नहीं कर सकते। क्या कन्याएं माताएं कर सकती हैं? करना चाहे तो कर सकती है। पुरुष सत्य को सारा जीवन उस शुक्राणु रूपी सत्य को, हद के सत्य को भी धारण नहीं कर सकते। इसलिए पुरुषों को कहा है दुर्योधन दुशासन, खास कलयुग में दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, झूठ का आधार लेकर के दुष्ट युद्ध करते हैं। युद्ध करना क्षत्रियों के लिए खराब बात है या अच्छी बात है? हैं? अर्जुन को क्या कहा? हैं? युद्ध कर या भक्खड़ा हो? युद्ध कर। लोगों ने समझ लिया हिंसक युद्ध किया। हिंसक युद्ध की बात नहीं है, गीता में तो आया है काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं। तो क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में एक दूसरे के महाशत्रु हैं? नहीं, हर पुरुष मात्र में जो काम विकार है और काम विकार की पूर्ति न होने पर जो क्रोध आता है, वो काम और क्रोध महाशत्रु हैं। इनसे युद्ध कर। युद्ध करने के लिए पहले से प्रैक्टिस करनी होती है या नहीं करनी होती है? अखाड़े में योद्धा कुश्ती लड़ते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही ये काम विकार का जो महाशत्रु है, पुरुषों में भी और स्त्रियों में भी, इससे युद्ध करने का और विजयी बनने का साहस रखना है या अर्जुन की तरह कायर बनना है? इस सृष्टि पर जिसे साकार भगवान कहा गया, जिसकी यादगार मंदिर में रखी है, उसने क्या किया है? काम विकार की इंद्रियों से युद्ध करके दिखाया या भाग गया? युद्ध करके दिखाया और जीत के दिखाया या भगोड़ा बन के जीता? जीत करके दिखाया। उसका तरीका भी बताया क्या, कैसे है? योग बल से। कैसे? योग बल से। अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। क्या मतलब? अपन आत्मा ज्योति बिंदु निराकार, मुझे बाप निराकार ज्योति बिंदु को याद करने से हो जाएगा? फिर कैसे होगा? हाँ, अपन को आत्मा समझ और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, हीरो पार्टधारी, उस हीरो पार्टधारी में शिव समान सदा शिव स्वरूप रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा से योग लगाओ। वो हमारा उस्ताद है। क्या अखाड़े में कुश्ती लड़ाते हैं तो उस्ताद होते हैं या नहीं? वो है देह की कुश्ती, जिस्मानी कुश्ती, और ये है आत्मा का विकारों का युद्ध। विकारों के युद्ध में दो युद्ध करने वाले अपने को अगर योद्धा समझते हैं और एक योद्धा दूसरे को ललकारता है तो कायर बनकर के भागना है या शिव की शक्ति बनना है? आत्मा, आत्म की स्थिति शिव की शक्ति है। वो चाहे पुरुष तन हो और चाहे स्त्री तन। हाँ, प्रियोरिटी भगवान कन्याओं माताओं को देते हैं कि कन्याएं माताएं हिम्मत करें तो हिम्मते बच्चे मददे बाप। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो बाप 100 कदम बढ़कर के तुम्हें सहयोग देगा। इसलिए कन्याएं माताएं ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हैं। पुरुषों में वो मादा नहीं है जो अपने सत्य की हद की शक्ति शुक्राणु को या बेहद की शक्ति सत्य अर्थात ज्ञान को, चाहे वो शंकर ही क्यों न हो, एवरलास्टिंग धारण कर सके। कोई पुरुष है दुनिया में ऐसा हुआ कि जन्म से लेकर जवान होने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक शुक्राणु का ह्रास न किया हो? कोई पुरुष संसार में ऐसा देखा है? है? नहीं है। कहते हैं कुंडलनी शक्ति जागृत हो सकती है। वो कुंडलनी शक्ति रीढ़ के नीचे के हिस्से में जहाँ गुप्त अंग होते हैं वहाँ सोई पड़ी है। अरे कोई ऐसी कुंडलनी शक्ति नहीं होती है, ये रजवीरी की शक्ति है। वो स्मृति की शक्ति से एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, उस एक ही याद की शक्ति से वो जो क्षरण है शक्ति का, शक्ति पात हो जाता है रजवीर्य का, वो बंद हो जाएगा। और मुरली में भी बोला है, तुम बच्चे जब त्रेता युग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज बंद। और डिस्चार्ज बंद हो जाएगा तो तुम नौजवान बनने लगेंगे या बुढ़े के बुढ़े रह जाएंगे? बुढ़े बनेंगे, नौजवान बनने लगेंगे, निरोगी काया बनने लगेगी। इसलिए कहा कि सारी दुनिया भी घोर अंधेरे में है, उत्थान का रास्ता क्या है दुनिया का कोई नहीं जानता, पतन के रास्ते में सारी दुनिया जा रही, चाहे ब्रह्मा कुमार हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमने बाप को क्या कहते हैं, पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? पहचान लिया है? नहीं पहचाना है? पहचान लिया। अच्छा, तो ब्रह्मा कुमार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार जो अपन को कहते हैं, एडवांस ब्रह्मा कुमार कहते हैं, जो कहते हैं हमने भगवान बाप को असली रूप में जान लिया, वो अनिश्चय बुद्धि तो नहीं होते है? होते हैं तो मरते हैं या जिंदा रहते हैं? वो भी मर जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहते हैं, वो भी मर जाते हैं। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी अपने बाप को नहीं जानते, जो बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है, प्रैक्टिकल में आकर देता है। क्या देता है? साकार में स्वर्ग देता है या निराकारी स्वर्ग बुद्धि के अंदर देता है? है? साकार स्वर्ग देता है। राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देता है साकार स्वर्ग में। तो वो साकारी बाप होगा या निराकारी बाप होगा? साकारी बाप होगा। वो साकारी बाप मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो मनुष्य अच्छे कर्म करना सीख करके स्वर्ग में देवता बनता है और भगवान बाप के आने पर भी, अंजाम करने पर भी कि हमने बाप को पहचान लिया, फिर भी बुरे कर्म करता है तो जीवन मुक्ति पाता है या द्वापर कलयुग में जीवन बंद पाता है? दोनों बातों की शूटिंग यहाँ होती है। कहाँ? संगम पर। श्रीमत पर चलता है तो जीवन मुक्ति, और श्रीमत की बरखिलाफी करता है वाचा से, वाइब्रेशन संकल्पों से, कर्मेंद्रियों के कर्म से, तो कहाँ जन्म लेता है? द्वापर कलयुग की दुनिया में नारकीय जन्म कहा जाता है, जो नर बनाता है। अभी नर रूप में हम शूटिंग कर रहे हैं, जो नर है जन्म मृत्यु के चक्र में आता है। ध्रुवम जन्म अमृतस्य च, अभी हम नर हैं कि नारायण जैसे देवता बन गए नर हैं, तो हम जो कुछ भी अभी श्रीमत के खिलाफ करते हैं कि नहीं करते हैं तो हम नरक की दुनिया अपने लिए बनाते हैं, अभी ही बनाते हैं। आत्मा अपना शत्रु और आत्मा अपना मित्र है। कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा श्रीमत पर चलती है तो जीवन मुक्ति का वर्षा पाती है। 500-700 करोड़ आत्माएं सभी जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगी। वो देगा उस समय 500-700 करोड़ भी आत्मा एक जन्म की जीवन मुक्ति पाएगी या नहीं पाएगी? तो उस समय जब 500-700 करोड़ भी आत्मा अपना शरीर त्याग करके महामृत्यु के समय आत्मलोक में जाएगी, तो उस समय वो बैठा होगा इस सृष्टि पर, वो बैठा होगा ज्ञान का वर्षा देने के लिए है? नहीं, उसका काम है सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का बाप, निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है। वो निराकारी ज्ञान का वर्षा बड़े बच्चे को दे कर जाता है और अलग बैठा के नहीं जाता है कि बड़े बच्चे को अलग से ट्यूशन देता हो। देता है? नहीं, सबको देता है, सारी दुनिया को निमंत्रण देता है, दिलवाता भी है कि बाप को जानो और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लो। तो देशिक के ब्राह्मण कहते हो कि हमने बाप को जाना, झूठ। एडवांस ब्राह्मण कहते हो हमने बाप को जाना, तो झूठ या सत्य?
सत्य
जाना।
आप कहते हैं ना,
बाप कहते हैं मैं आता हूँ तो दख से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। आ गए राजधानी में तो जाना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तो एक सेकंड में राजा जनक को जीवन मुक्ति देता हूँ। राजा जनक पहला नंबर होगा जीवन मुक्ति लेने वाला या बाद का नंबर होगा? जनक माने ही जन्म करने वाला, इस मनुष्य सृष्टि का जन्मदाता, मनुष्य सृष्टि का बाप जनक हुआ। सीता रूपी धरणी का भी बाप, बाप कहो पति कहो, प्रकृति पति कहा जाता है, सीता पति कहा जाता है, पार्वती पति कहा जाता है, मायापति भी कहा जाता है। वो बाप मायापति कहा जाता है, वो बाप या नीचे वाला बाप, वो मायापति थोड़े ही बनता है, वो माया को जन्म देता है क्या? नहीं, माया को जन्म देने वाला बाप मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों का बाप नर ही होगा या नारायण होगा? नर ही होगा। तो बताया, सारी दुनिया जिनों को भगवान के मिलने की महसूसता आज तक हुई ही नहीं, उनका अनुभव ही नहीं कहता कि हमें भगवान बाप मिला। जो कहते हैं ज्यादा तादाद में ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद, कि हमें भगवान बाप मिला। बाप कहते हैं टिक टिक बहुत करते हैं, बाप का परिचय नहीं देते। और एडवांस कहले देने वाले ब्राह्मण भी वो भी टिक टिक बहुत करते हैं, लेकिन बाप का परिचय नहीं देते। तो बाप कहते हैं आज की वाणी में खास वाक्य पकड़ा, पहले तो अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना तो जीवन बनावे, बाप को पहचान कर या बिना पहचाने? पहचाना हाँ, फिर हाँ पहचाना अगर बाप को, तो वाणी में बोला कि जो देखे इन आंखों से, जो कानों से सुने, दो शब्द भी सुनेगा उसके मुख से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। ऐसा इस दुनिया में अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं? देख रहे हैं? हाँ? नहीं देख रहे हैं? तो कैसे कहा जा सकता कि हमने बाप को पहचान लिया, हमें बाप मिल गया? मिल गया तो किसी दूसरे को मिलाया है? जो एवरलास्टिंग कहे कि हमें मिल गया, बाप मिला, सब कुछ मिला, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। इच्छा मात्र अविद्या हुए नहीं हुए तो कहाँ मिला? भले कितना ही उनका तुमान है, चाहे बड़े बड़े बीके हैं, बड़े बड़े सम्मानधारी बीके, चाहे बड़े बड़े पी बीके हैं, बहुत सम्मान मान लेने वाले हैं, भले कोई हैं जो समझते हैं कि हम सबसे बड़े ब्रह्मा कुमार हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। बाप कहते हैं कितना भी उनका तुमान हो, मान सम्मान हो, इस दुनिया में जिनका बहुत मान सम्मान है, मुरली में क्या बोला उनके लिए? सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इस दुनिया में जिनका बहुत मान है, बहुत तुमान है, वो इस दुनिया के बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बता दिया, मुरली में ही बता दिया, हम ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती किसका मान मर्तबा है? किसका बताया है? कुमार काका बहुत मान मर्तबा है। तू बताओ, ब्राह्मण बच्चों ने ये बात को सच्चा माना या झूठा माना? है सच्चा माना था, और अभी अभी जो एडवांस में आ गए उनको तो पता चल गया असलियत का। क्या असलियत का पता चल गया? कि कुमार का दादी जीवन रहते ये लक्ष्य रख रही थी, सबके सामने बोलती थी कि ब्रह्मा बाबा का जो कुर्सी है जो पद है, जो मर्तबा है, वो मैं लूंगी, मेरे अलावा और किसी को नहीं लेने दूंगी। और जीवन रहते भी करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा का जितना मान सम्मान लेने वाली कोई ब्रह्मा कुमारी बनी, वो कौन बनी? कुमार का दादी बने। बड़े बड़े पोस्टर अभी भी यादगार में रखे हुए, पोस्टर छपाए गए, बड़े बड़े प्रोग्राम किए गए, और उन पोस्टरों में ऊपर कुमार का दादी का चित्र, बीच में जनक दादी का चित्र, और नीचे गुलजार दादी का चित्र, और उन तीनों चित्रों से ऊपर शिव ज्योति बिंदु। मना, ब्रह्मा बाबा ने भले साकार में शरीर छोड़ दिया तो भी ये त्रिमूर्ति अभी भी कायम है। अपन को शंकर, गुलजार दादी को ब्रह्मा, और जानकी दादी को पालना करने वाली ब्राह्मणों की दुनिया की विष्णु बनाए के रख दिए। आप देखते हैं, कुमार का दादी शंकर जी के चले जाने के बाद पालना ब्राह्मणों की दुनिया की कौन कर रही है? जानकी दादी कर रही है। तो सच्ची बात या झूठी बात है? ब्रह्मा विष्णु शंकर असली है या नहीं है?
एडवांस में अनेक बार बोलते हैं ना, असली
है। तो देखो, ये पिछाड़ी का तुमान है। कोई इस दुनिया का कितना भी मान सम्मानधारी तुमानधारी हो, लेकिन ये उनका पिछाड़ी का तुमान है। अभी पूरा अंत नहीं हुआ है इस दुनिया का। क्या? पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया का पूरा अंत नहीं हुआ है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की तीन बार सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई, तीनों बार बिगाड़ दी। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। सन 36-37 में ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई और वो सृष्टि का विघटन 42-45 के बीच पूरा ही हो गया। सैतालीस में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम का नया संगठन, नई दुनिया तैयार हो गई, दूसरा संगठन बना। 18 जनवरी 69 को दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, मुखिया ने शरीर छोड़ा, तो जैसे विघटन लाजमी है। कोई भी दुनिया के धर्म पिताएं जब तक जीवित रहे तब तक धर्म का उत्थान होता है, फिर जब वो शरीर छोड़ गए उनके फॉलोअर्स ने उस धर्म का मटिया मेट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही यहां हुआ। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद तुरंत उसी वर्ष में अपने अपने जॉन इंचार्ज बन करके बैठ गए। द्वैतवाद शुरू हुआ या नहीं हुआ? शुरू हो गया। पहले सारे भारतवर्ष के सेंटर्स का संचालन माउंट आबू से होता था, ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमारियां आपस में लड़ पड़ी, बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां तुमानधारी, और उन्होंने आपस में अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर दिया। जैसे द्वापर में होता है, इब्राहिम आता है द्वैतवादी धर्म पिता के आते ही भारत में इस्लामियों का और देवता से जो हिंदू बने उनका झगड़ा शुरू हो गया और अपना अपना प्रोविंस अलग कर लिया। भारत अलग हो गया, अलग अरब देश अलग हो गया। तो ऐसे ही बाबा ने बताया कि अभी इस दुनिया के जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तुमानदारी हैं, मान मर्तबे वाले हैं, उनका ये पिछाड़ी का मान मर्तबा है। चाहे वो महाभारत प्रसिद्ध धृतराष्ट्र ही क्यों न हो, कौन बड़े से बड़ा मानधारी कौन था? धृतराष्ट्र। धृत माने धर लिया, राष्ट्र माने धन संपत्ति। सारे भारत की धन संपत्ति के ऊपर किसका कब्जा हो गया? धृतराष्ट्र का कब्जा हो गया। आज भी भारत की वो ये स्थिति है। कौन है भारत में जिसके हाथ में ये भारत की सारी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की बागडोर है? कोई है, टाइम टू टाइम प्रधानमंत्री होते हैं ऐसे कहेंगे, कोई कहें कि राष्ट्रपति होता है, कोई कहेंगे जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनका संगठन है। नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हों, एमपी हों, चीफ मिनिस्टर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों, या रबर स्टाम्पधारी राष्ट्रपति हो, उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा देने वाले बड़े बड़े धनपति हैं या कोई दूसरा है? है? तो जो सबसे जास्ती पैसा देते हैं, ब्लैक से कमाया हुआ पैसा, नहीं तो पसीने की कमाई से कमा करके कोई आज की दुनिया में अरबपति शंखपति नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता। ऐसे बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट की सत्ता है। वही महाभारी महाभारत का समय चल रहा है। भले भारत में कितने भी बड़े बड़े माने जा रहे हैं, ये बड़े बड़े मानधारी तुमानधारी मान सम्मान लेने वाले दुनिया से भारत में खास, इनका पिछाड़ी का तुमान है थोड़े समय का। अब दुनिया बदलने वाली है। क्या है? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई गिरने वाला है, कोई उठने वाला है, सारी दुनिया उल्टी हो जाएगी। अब जो पांडव और पांडव पति जो पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला डायरेक्टर है, उन पांडवों का बीज जो पंडा है, पांडु जिसे कहा गया, वो संसार सागर रूपी जंगल में जैसे राम ने जंगल में रह करके वनवास धारण करके पुरुषार्थी जीवन व्यतीत किया था, ऐसे ही वो पंडा जो पांडवों का बीज है, वो पंडा अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इस संसार रूपी जंगल में धूल चाट रहा है, गली गली में चक्कर मार रहा है, दूसरे शब्दों में गली गली की धूल चाट रहा है। वो पांडवों का बीज बीज के ऊपर आधारित है। क्या पांडव ब्राह्मणों के वेश में क्या करते थे है? उनके पेट पूर्ति कैसे होती थी? ब्राह्मण के रूप में भिक्षुक थे या नहीं भिक्षुक थे है? भिखारी थे ना। तो उनका मान तो मान है इस दुनिया में नहीं है। बाप कहते हैं ये मान तो मान धारियों का अभी पिछाड़ी का तुमान है, इस तुमान से इस मान सम्मान से अल्पकाल के मान सम्मान से कोई सारा जीवन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? नहीं बनेगा इन विचारों का, मैंने भगवान की दृष्टि में ये विचारे हैं, इनका मान मर्तबा सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। ब्राह्मण जो अच्छे अच्छे समझदार हैं, वो तो समझेंगे क्या है ये, देखो ये कितने बड़े आदमी हैं दुनिया में जिन्हें बड़ा माना जाता है। तुम ब्राह्मणों की दृष्टि में वो बड़े हैं या आत्मिक दृष्टि रखने वाले ब्राह्मणों की दृष्टि में वो आत्माएं जन्म जन्मांतर नीच पद पाने वाली हैं या उच्च पद पाने वाली है? जन्म जन्मांतर के लिए नीच पद पाने वाली, आखिरी जन्म में जाकर उनको कोट पतनून मिलनी है। क्या तुम्हारी दृष्टि में वो बड़े आदमी नहीं है, चाहे भारत के राष्ट्रपति ही क्यों न हो। तुमसे कोई पूछे कि तुम राष्ट्रपति का पद लेंगे तो तुम थूक मारेंगे, ऐसे बोल दिया मुरली ने। क्या बोल दिया? तुम राष्ट्रपति पद को भी थूक मार देंगे। अरे हमारे पद के सामने ये पद क्या है? अल्पकाल का, वो भी कांटों का ताज है या हीरों का ताज है? कांटों का ताज है। चैन की नींद सो भी नहीं सकते। हाँ एक बड़ी बात ये लगती है कि ये बेचारे बाप को नहीं जानते, इस दुनिया के मान सम्मान तो मानदारी। देखो आगे बाप को नहीं जानते थे तो ऐसा नहीं समझना, भले पैसे भी होते हैं तो कोई दुख नहीं होता है। अरे नहीं, ये मान तो मानदारियों के पास भी पैसों की बात नहीं है, सिर्फ दुख तो सबको होते हैं, बीमारी सीमारी होती है या नहीं होती है, कोई मरते हैं तो कितना रड़ापा करते हैं, उनके परिवार में रड़ापा नहीं करते, करते हैं। कोई इनकम टैक्स में पकड़ा गया, बड़े बड़े को भी पकड़ लेते हैं ना, तमिलनाडु में कौन पकड़ा गया, कोई बड़ा पकड़ा गया कि छोटा मोटा, कौन पकड़ा गया? अरे शर्म आती है, डर लगता है, कोई कौन पकड़ा गया है? फाइनेंस मिनिस्टर पकड़ा गया है? अभी नहीं है। इनकम टैक्स में कोई बड़ा पकड़ा गया तमिलनाडु में, कौन? चीफ मिनिस्टर पकड़ा गया, तो बड़ा आदमी नहीं हुआ? टैक्स आया, ये पकड़ा गया, तो देखो इनकम टैक्स आया, फलाना आया, दो दो तीन तीन रोज की नींद ही हराम हो जाती है, होती है कि नहीं? बड़े बड़े आदमियों की भी। तो बच्ची समझाना, कोई पैसा न दिया, कोई सारा तुम्हारा पैसा लेकर के या उनका पैसा लेकर के पैसे को डुबा दिया। आजकल बड़ी बड़ी कंपनी, उनके बड़े बड़े मुखिया, अभी थोड़े साल पहले यूटीआई नाम की एक बड़ी कंपनी थी, याद है? है? कितना पैसा था, वो सारी कंपनी डूब गई या रह गई? है? डूब गई। तो ऐसे होता है ना बच्चे, ऐसे मत समझना। कोई को भले धंधे में किसका फायदा होवे, तो भी कुछ न कुछ है, उनको भी आफतें तो आती ही रहती है। मरने वाला मरा, आज फलाना किया, गंदे गंदे काम कर लेते हैं ना, पकड़े जाते, आज कोई मरा। तो इन सब बातों में यहाँ जो बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, इन बच्चों को तो बड़ी खुशी होती है, क्या कि हमारा पार्ट तो बहुत अच्छा है, जो हम इस दुनिया के बड़े आदमी नहीं बने हैं, साधारण आदमी है या बड़े आदमी? साधारण आदमी। हमारा बाप भी साधारण, हम भी साधारण, यहाँ तो कोई भी अरबपति है, करोड़पति भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा, कोई है नहीं? तो तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए, एक ही बात सिर्फ है कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं और शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। क्या कहा? पढ़ाते भी कौन है? शिव बाबा पढ़ाते हैं और वर्षा भी कौन देते हैं स्वर्ग का? शिव बाबा ही हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं कि शिव बाप देते हैं? शिव बाबा और शिव बाप में अंतर मालूम है? हैं? क्या अंतर है? शिव बाप है आत्माओं का निराकार, आत्माओं का बाप, और शिव बाबा साकार मनुष्य सृष्टि में जो साकार मनुष्य हैं, उनका बाबा शिव बाबा, जो पुरुषार्थ करके शिव बाप समान बन जाता है, पुरुषार्थ करके बन जाता है, या बाप हेविन का वर्षा दे कर जाता है, पुरुषार्थ करके हेविनली गॉड फादर बनता है, हम बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाता है। तो देखो, ये तुम बच्चों को खुशी हुई ना? खुशी नहीं होती? याद कोई भी करते रहे तो बड़ी खुशी रहे। इन बातों को याद करते रहे तो बड़ी खुशी बनी रहे। पीछे ये झंझट वंझट, ये सब लड़ना झगड़ना, वो ख्याल से निकल जाएगा अगर इन बातों में बुद्धि लगी रहे तो। परंतु नहीं होता है ये। क्या? इन्हीं बातों में बुद्धि लगी रहे ये होता नहीं। क्यों नहीं होता? अरे क्यों नहीं होता है? नहीं, इसलिए नहीं होता कि संग के रंग की बलिहारी है। क्या? एक घंटा दो घंटा ईश्वरीय सत्संग कर लिया और बाकी 22 घंटे है धंधा दोरी की दुनिया का संग, तो ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? है बाहरी दुनिया का प्रभाव पड़ जाएगा। तो फिर अच्छे अच्छे महारथी भी आपस में ही फटकते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, यह करते हैं वह करते हैं, तो उनकी बुद्धि में जो खुशी होनी चाहिए, का पारी खुशी, वो खुशी नहीं रहती है। मैंने देखा कि ये अच्छी रहती है सर्विस में, ये करनाल वाली बच्ची, भले इसके पास बच्चे बच्चे ऐसे हैं जो चरिए खरिए हैं, मत्था खपाने वाले हैं, परंतु इस बच्ची को शौक बहुत अच्छा है ईश्वरीय सेवा करने का। इनको अच्छा है। और जो अमृतसर वाली है, वो अचल में भी अच्छा शौक है। कहाँ की? क्या नाम दिया? अमृतसर। सर में क्या भरा पड़ा है? अमृत भरा पड़ा है। ये क्या होता है? बेहद में अमृतसर क्या हुआ? जिसके सर में मनन चिंतन मंथन से निकला हुआ ज्ञान अमृत भरा हुआ है, वो अमृतसर वाली बच्ची इनको भी अच्छा शौक है। आजकल शौक ये जो लक्ष्मी है वीणा नगर में, कौन सी नगर में? वीणा नगर में वीणा से कनेक्शन किसका है? है वीणा वादिनी, कौन है? सरस्वती। जो वीणा वादिनी का नगर है उनको अच्छा शौक है, और कुछ रिफाइन भी है, कुछ है। क्या वीणा वादिनी कौन थी उस समय जब ये मुरली चल रही थी? है कोई हुई कि नहीं हुई? अपना सेंटर छोड़ करके वो बाहर में इतनी सर्विस नहीं कर सकती। क्या कहा? कोई बच्ची है जो अपनी भी सर्विस करे, अपने सेंटर की भी सर्विस करे और बाहर की भी सर्विस कर सके? ऐसे भी बच्चे हैं। बच्ची जो करते हैं अपने कल्याण के लिए ही करते हैं। बाबा बाबा कहकर के भी समझाएं, क्योंकि अभी तो हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। क्या? अभी हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। कौन है बेहद का बाबा? क्या वर्षा है बेहद के बाबा का? अरे अभी हमको वर्षा मिल रहा, 67 में, 67 में बोला, अभी हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। हद इस दुनिया में होता है या इस दुनिया से परे हद होता है? इस दुनिया में हद और इस दुनिया से परे वो है बेहद। बेहद की दुनिया है स्वर्ग, और बेहद की दुनिया है आत्मलोक परमधाम। हद की है बेहद की, सूरज चांद सितारों से भी, उसकी हद से भी पार। तो अभी हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। बेहद का बाबा कौन हुआ? अरे बेहद का बाबा ब्रह्मा के द्वारा क्या वर्षा देता है? कि ज्ञानामृत का वर्षा देता है। अभी अभी मैंने कभी है 67 में बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। क्या वर्षा मिल रहा है? जो बेहद का बाबा, बेहद आत्माओं का जो बाप है, उससे हमको बेहद ज्ञान अर्थात निराकारी ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, वो है बेहद का वर्षा। और इस दुनिया का वर्षा क्या है? इस दुनिया का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। क्योंकि बेहद का बाबा तो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, दो बातें हो गई। अभी तो हमको बेहद के बाबा का वर्षा मिल रहा है। कौन है बेहद का बाबा जो 67 में वर्षा मिल रहा है? शिव बाप। क्या बेहद का वर्षा? बेहद ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, क्योंकि बेहद का बाबा तो स्वर्ग का वर्षा कर रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा स्थापन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं बेहद का वर्षा, स्वर्ग का स्थापन करने का वर्षा? बेहद के कितने बाप हैं? एक बाप है आत्माओं का बाप, वो बेहद का वर्षा ज्ञान का वर्षा देता है। दूसरा बाप है बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप, वो क्या वर्षा देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अभी तो वो ब्रह्मा द्वारा, क्या अभी वो बाप ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि रथ तो उनको चाहिए ही, उनको रथ तो चाहिए, और यहाँ तो लगा हुआ है सीधा कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा? कहे कि लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, काहे की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहे हैं, न कि जीवन मुक्ति स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रहे हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्त स्वर्ग की स्थापना की बात साबित नहीं होती है, तो जरूर आगे चल के क्या करेंगे हैं? ब्राह्मण धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, तो आगे चल करके क्या करेंगे? ब्राह्मणों को नंबरवार ब्राह्मण हैं, नौकुरी के ब्राह्मण हैं, तो जिस नंबर के ग्रुप के ब्राह्मण हैं उनको वैसा ही वर्षा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो अव्वल नंबर ग्रुप के ब्राह्मण हैं नौकुरियों में से, उनको सूर्यवंशी वर्षा मिलेगा। जो द्वयम नंबर के ब्राह्मण हैं उनको चंद्रवंशी वर्षा मिलेगा, चंद्रमा से। सूर्यवंशी वर्षा किससे? सूर्य से। और चंद्रवंशी वर्षा किससे? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से। और उसके बाद नौ कुरियों में से दो कुरियों के बाद तीसरी चौथी पांचवी कुरी, उनको राजयोग नहीं सिखाएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को ही राजयोग सिखाएंगे या और कुरियों को भी राजयोग सिखाएंगे? और कुरियों को भी राजयोग सिखाएंगे, माने और कुरियों वाले राजयोग सीख करके राजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? नई दुनिया में नहीं बनेंगे। अच्छा, नहीं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण तो विश्व के महाराजा हुए, दादा लेखराज वाली आत्मा कृष्ण, जो सतयुग में कृष्ण के नाम से विख्यात होगी, वो सतयुग का राजा बनेगा। उसके बाद राजा नहीं बनेंगे, कृष्ण के बाद वाली पीढ़ी होगी उसमें राजा नहीं बनेंगे। तो जो राजा बनेंगे वो कौन सी कुरी के ब्राह्मण होंगे? हाँ, वो पहली और दूसरी कुरी के ब्राह्मण नहीं होंगे, वो तीसरी और चौथी पांचवीं छठी सातवीं आठवीं गद्दी के मालिक बनेंगे। लेकिन उनका शास्त्रों में कोई जिक्र नहीं, उनकी पूजा नहीं होती। सतयुग के सात नारायणों की बाद वालों की पूजा होती है? मंदिर बनते हैं? नहीं बनते। वो असली देवता नहीं है सोलह कला संपूर्ण। वो सप्तऋषि तो कहे जाएंगे द्वापर युग में। क्या पवित्र रहने वाली आत्माएं तो हैं, लेकिन वो क्या नहीं बनेंगे? सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजा पक्के राजा नहीं बनेंगे। हाँ, उनको भी जरूर राजयोग पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे अभी या भविष्य में। हाँ, तो कौन पढ़ाएंगे? उन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों को, ब्राह्मणों को कौन पढ़ाई पढ़ा करके राजा बनेगा बनाएगा? विदेशों में राजा बनते हैं, बने हैं या नहीं बने हैं? अरे हिस्ट्री में, 2500 वर्ष की हिस्ट्री में विदेशों में राजा बने हैं या नहीं बने हैं? बने हैं। तो जो बने हैं उनको कौन राजा बनाएगा राजयोग सिखाकर? धर्म पिताएं बनाए, धर्म पिताएं धर्म स्थापना करते हैं कि राजा ही स्थापन करते हैं? राजा ही तो नहीं स्थापन करते। तो जो राजा ही स्थापन ही नहीं करते वो दूसरों को कैसे राजयोग सिखाएंगे? है? है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो उनको राजयोग सिखाएगा। शिव बाप नहीं सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाएंगे? कर्म क्योंकि वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। संपूर्ण आत्मा सोलह कला संपूर्ण बनती ही नहीं। वो आत्माओं का बाप है। किसका बाप?
आत्मा का।
कि देह अभिमानियों का बाप है?
आत्मा का बाप।
किसका बाप?
आत्मा का बाप।
आत्माओं का बाप है जिनमें देहवान खत्म ही नहीं होता। खत्म होता है सेकंड नारायण सतयुग का, थर्ड फोर्थ सातवां नारायण, उसमें देहवान खत्म होता है? नहीं होता। तो जिनमें देहवान खत्म ही नहीं हुआ जो बाप कहते हैं, आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। क्या मतलब हुआ? बेसिक नॉलेज लेने वाले जो भी बच्चे हैं उनके देह अभिमान की कट, देह रूपी मिट्टी, कट माने मिट्टी, देह अभिमान की मिट्टी की कट उतर जाएगी तो डायरेक्ट बाप से सीखोगे। और कट कैसे उतरती है, जंक कैसे छूटती है? जंक छुटाने के लिए क्या साधन अपनाते हैं? है? लौकिक दुनिया में, लौकिक जो लोहा है आयरन है, आयरन इज द आत्माएं की बात बाद में। जो आयरन है, लोहा है, उसकी जंग छुड़ाने के लिए क्या डालते हैं? मिट्टी का तेल डालते हैं। और 76 से पहले जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी थे, उनको इस्लाम धर्म की आत्मा निमित्त बनती है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में वो इस्लाम धर्म की आत्माएं उनके देश में कौन सा तेल होता है? मिट्टी का तेल होता है, वो जड़ मिट्टी का तेल। और ये बाबा के शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी 1969 के बाद ब्राह्मणों की दुनिया में जो राजा बनकर के बैठी, कौन? वो आत्मा देह अभिमान की मिट्टी से मना सना हुआ ज्ञान सुनाती थी या प्योर रिफाइंड ज्ञान सुनाती थी? रिफाइनिंग, जो इस्लाम धर्म में मिट्टी का तेल या क्रूड ऑयल क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल होता है, मिक्स तेल, उसकी रिफाइनिंग कौन से देश में होती है? भारत में रिफाइनिंग देश रिफाइनिंग होती है। तो कुमारका दादी जब तक जीवित रही तो 76 तक जो भी ब्राह्मण थे बेसिक में, उन्होंने वो क्रूड ऑयल यूज किया या रिफाइंड ऑयल यूज किया? क्रूड ऑयल यूज किया, मिट्टी का तेल, अनरिफाइंड तेल ज्ञान मार्ग में यूज किया। तो कट उतरती है या नहीं उतरती है मिट्टी के तेल से? उतरती है। मिट्टी का तेल भी अगर ज्यादा डाला और घिसा तो कट जरूर उतरती है। तो जिन बच्चों ने भी वो मिक्स मुरलियां, क्या जिनमें ज्ञान के पॉइंट हटाए भी गए हैं, क्या कटिंग की गई है, वो मुरलियां अच्छी तरह पढ़ी, मैंने मिट्टी के तेल को भी अच्छे से यूज किया, तो कट उतरी या नहीं उतरी? बाबा कहते हैं गीता पाठी ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण? गीता पाठी ब्राह्मणों को सुनाओ, गीता ज्ञान कहा जाता है, अमृत नहीं कहा जाता, क्या? गीता ज्ञान अमृत लेने वाले ब्राह्मणों को सुनाओ, ये नहीं कहा, क्या कहा? गीता पाठी ब्राह्मणों को सुनाओ। तो गीता का ज्ञान ब्रह्मा के मुख से निकला और उस ज्ञान को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ने क्या किया? मुखिया बनकर के, राजा बनकर के ब्राह्मणों की दुनिया में कंट्रोल किया। यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रजा वर्ग में से जो आत्माएं उस मिट्टी के तेल को अच्छे से यूज किया और यूज करके उन्होंने अपनी आत्मा की कट उतार ली, तो उनके लिए वरदान दिया, क्या? आत्मा की कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे, ये बच्चे नहीं, वो बच्चे नहीं, ये बच्चे माने ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, वो बच्चे नहीं, उनकी कट नहीं उतरने वाली, क्योंकि वो इस्लाम धर्म से प्रभावित हो गए, क्रिश्चियन धर्म से प्रभावित हो गए, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, तो वो आत्मा कृष्ण की आत्मा प्रभावित हो जाती है दूसरे धर्मों से। तो प्रभावित होना माने प्रजा, वो तो प्रभावित होकर के उनकी प्रजा बन जाते हैं। भारत की माताएं ही कन्वर्ट होती हैं, भारत की कन्याओं माताओं को ही कन्वर्ट करके इस्लामी अपने देश में ले जाते हैं। आज भी भारत की कन्याओं को खरीद खरीद करके इस्लाम धर्म के लोग भारत से लेकर के अपने धर्म में अपने देश में ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं कि नहीं? ले जा रहे हैं। तो वो माताएं कन्वर्ट होती हैं, इसलिए भारत को मातृ प्रधान देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातृ प्रधान देश है। क्या खासियत है इस मातृ प्रधान देश की? चाहे वो अव्वल नंबर की भारत की आत्मा क्यों न हो, परम ब्रह्म, बड़ा ब्रह्म माँ है कि नहीं है? इस भारत की बड़े से बड़ी पाठधारी आत्मा जो ज्ञान में रत रहने वाली साबित होती हो, छोटी हो बड़ी हो, वो सारे ही भारतवासी, उनमें मोस्टली ऐसे हैं ज्यादातर संख्या में जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे होते रहे होते रहे। चाहे वो सतयुग का सेकंड नारायण हो, वहां भी कन्वर्ट हो गए द्वापर युग में, थर्ड फोर्थ सेवेंथ नारायण आठवां नारायण, वो सब द्वापर युग में कन्वर्ट होते रहे। वो नारायण वाली आत्माएं द्वापर में पहुंचती हैं, कलयुग में पहुंचती हैं, ऊपर से धर्म पिता प्रवेश करता है उन नारायण वाली आत्माओं में। तो वो नारायण बनने वाली आत्माएं आधार बनी धर्म पिताओं का या नहीं? आधार माने माता, आधार माने माता। अब उनको फॉलो करने वाली जितनी भी सतयुग की प्रजा है, वो अपने राजा को ही फॉलो करेगी, वो सारे ही कन्वर्ट होते हैं। तो भारत मातृ प्रधान देश है, माताओं की यहां प्रधानता है, कन्वर्ट होने वाली माताओं की, दूसरे धर्म में यहां की माताएं कन्वर्ट हो जाती हैं। तुम बच्चे मनुष्य षष्ठ रूपी झाड़ में जो सीधा तना ऊपर जाता है, उसमें रहने वाली पक्की आत्मा हो उद्धार मूर्त उत हर, क्या ऊपर को हरण करके अपनी आत्मा को ले जाते हो? उद्धार मूर्त माने ऊपर को आत्मा को हरण करके ले जाते, जबरदस्ती हुआ आत्मा को ऊपर ले जाते। कोई भी कर्म करते तुम ये प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो, कामेंद्रिय की ही कर्म की प्रैक्टिस कर, कामेंद्रिय की ही कर्म की बात मुख्य है, वो कर्म करते हुए भी तुम ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर लेते हो कि बुद्धि ऊपर ही जाए नीचे ना आए। गीता में भी लिखा है उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादये, क्या उत हरे, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाए, क्या ऊपर हरण करके ले जाए, कर्म करते समय भी नात्मानम अवसादये, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति भी हो आत्मा को नीचे न गिरने दे, अवसादयेत माने नीचे न गिरने दे। तो तुम वो बच्चे हो, उद्धार मूर्त बीज रूप आत्मा हो, तुम आधार मूर्त नहीं, माने तुम उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते हो। और ये जो दूसरा तीसरा चौथा नारायण और पहला भी नारायण सत्ययुग का, वो उसी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर विधर्मी विदेशी जबरदस्ती करके तुमको अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते उस जन्म में। जैसे बुद्ध, सिद्धार्थ नाम था, उस नारायण का नाम, तीसरे नारायण का नाम सिद्धार्थ, वो सिद्धार्थ में बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया तो आधार मूर्त हुई ना, है? बुद्ध ने उसका आधार लेकर बौद्ध धर्म के परिवार को बनाया, बौद्ध धर्म के परिवार को बनाने के लिए किसका आधार लिया? सिद्धार्थ रूपी तीसरे नारायण का आधार लिया। वो सिद्धार्थ कन्वर्ट होता है बौद्ध धर्म, उसका बाप कन्वर्ट नहीं होता, वो बीज रूप आत्मा है। ये हिस्ट्री की बात है। सिद्धार्थ का बाप बौद्ध ही नहीं बना, अपने बच्चे को देश निकाला दे दिया। क्या? देश निकाला दे दिया बच्चे को, लेकिन खुद कन्वर्ट नहीं हुआ। और उसका भी बाप, वो भी कन्वर्ट नहीं होता, वो भी बीज है। तो तुम बीज रूप बच्चे हो, उद्धार मूर्त बच्चे हो, आधार मूर्त नहीं हो। तुम्हारी संख्या बहुत कम है। उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माओं की संख्या बहुत कम है, और आधार मूर्त माताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे वो कृष्ण की डायनेस्टी में आने वाली हो, चाहे दूसरा नारायण तीसरा नारायण से लेकर आठवें नारायण तक की राजधानी में आने वाली हो, वो सभी आत्माएं, क्या कहा, वो सभी आत्माएं आधार मूर्त माता का पार्ट बजाती है। क्या? माता का पार्ट बजाती है। उद्धार मूर्त ऊपर चढ़ने वाले धर्म का आधार लेकर के जीवन में नहीं चलती है, इधर के धर्म में कन्वर्ट होती। मनुष्य श्रेष्ठ रूपी जो झाड़ है उसमें दाई ओर कन्वर्ट होती है या तो बाई ओर कन्वर्ट, भारतीय धर्म में कन्वर्ट हो जाती या तो विदेशी धर्म में कन्वर्ट हो जाती। तुम कन्वर्ट नहीं होते, हाँ उस जन्म में तो कन्वर्ट नहीं होते। महात्मा बुद्ध का पिता, महात्मा बुद्ध का ग्रैंडफादर, वो उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन बुद्ध वाली आत्मा चीन जापान में जाकर के बड़े जोर शोर से बौद्ध धर्म का प्रचार करती है, सारा जापान सारा बौद्ध बौद्ध ही बन जाता है, देश विदेश में हवा उड़ जाती है बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की। तो जो पिता है सिद्धार्थ का और जो बाबा है, उसको अंदर से खींच होगी कि नहीं उस बच्चे की, कि मेरे खून से पैदा हुआ बच्चा इतना बड़ा महान धर्म पिता बन गया। वो जो खींच होती है अपनेपन की, वो अगले जन्मों में जाकर के वो खींच कन्वर्ट करके ले जाती है उस बच्चे के पास, जहां जाकर के वो आत्माएं जन्म लेती है। और वो भी पावरफुल आत्माएं हैं, इसलिए उस धर्म में जाके जन्म लेने के बावजूद भी उस धर्म में राजाई स्थापन करके वापस आती है। क्या? राज्य स्थापन करती है। कोई भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट राज्य स्थापन नहीं करता। क्या? वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, और इसकी शूटिंग यहाँ होती है। ये प्रजापिता वाली आत्मा और उसके फॉलोअर्स आत्माएं ही ऐसी पावरफुल आत्माएं हैं जो धर्म स्थापना के साथ साथ राजधानी की भी स्थापना करती हैं। ये संस्कार है इनमें, इसलिए ये श्रेष्ठ संस्कार वाली आत्माएं अगले जन्मों में जब दूसरे धर्म में जाकर के जन्म लेती हैं, तो व्यर्थ जन्म नहीं लेती। वहां भी जाकर के उनके राज्य की स्थापना करके फिर वापस आ जाती। तो बोला कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं ब्राह्मण धर्म की, फिर स्वर्ग की स्थापना कौन करता है? परम ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है उसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर राजयोग सिखाएंगे। क्या? राजयोग सिखाएंगे। किसको? उन ब्राह्मणों को, कमकुरी वालों को, जिनकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा होती है। नहीं समझे? ब्रह्मा द्वारा जिन कमकुरियों वाले ब्राह्मणों की स्थापना होती है, उन ब्राह्मणों को भी राजभाग देने की शूटिंग यहाँ होती है संगम में। और वहां भी ब्रह्म ड्रामा में वो आत्माएं उन धर्मों में जाकर के जन्म लेंगी और उनकी राज्य की स्थापना करके वापस आएंगी। जैसे मुगल सल्तनत। क्या? मुगल राज्य भारत में स्थापन हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल राज्य चला। उसका पहला राजा बाबर, नाम क्या? बाबर। वो संगम युग में भी बाबा थे और वहां भी बाबा रह करके उसने भारतवासियों की जो अंधश्रद्धा है जड़ मूर्तियों के प्रति, जड़ चित्रों के प्रति, उस अंधश्रद्धा का खंडन किया था। स्थापन हुई थी बाबरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद? बाबरी मस्जिद। बाबरी किसे कहा जाता है? बाबरी माने पागल। क्या? पगलिया मस्जिद। नाम भी दिया मस्जिद। कैसी मिस? जिद करने वाली मिस, अपनी जिद पर अड़ी रहती है। ओम शांति।